प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे वे जय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो।
ओम शांति। किसी राज्य का ये नियम था कि वहां पर जो भी राजा बनेगा वो 5 साल तक निर्बाध रूप से राज्य कर सकेगा। उन 5 सालों में कोई चुनाव नहीं होगा। उन 5 सालों में उसे कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। उसे जो करना है निरंकुश उसका शासन होगा। परंतु 5 साल के बाद उस राजा को एक नाव में बिठाया जाएगा, नदी पार की जाएगी और नदी के उस पार एक बिहड़ जंगल है जिसमें बहुत खौफनाक प्राणी है, जानवर है, और उसे वहां छोड़ दिया जाएगा और वो जानवर उसे खा जाएंगे। पहला राजा आता है, राज्य करता है, राज्य पूरा होता है 5 साल का, नाव में बिठा दिया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति राजा बनता है। ये दूसरा राजा ये सोच सोच के परेशान हो जाता है कि अब मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। उसका सारा समय, उसका सारा वो टेन्यूअर दुख में, दर्द में गुजरता है। वो 5 साल वो बस चिंता ही करते रहता है कि अब मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, और वैसा ही होता है। पूरे 5 साल दुख में बीते और 5 साल के बाद नाव में बिठा दिया जाता है और नाव उसे ले जाती है उस पार, और वहां पर जंगली खौफनाक जानवर। तीसरा राजा थोड़ा बुद्धिमान है, वो सोचता है, चिंतन करता है कि मेरे पहले राजाओं का क्या हुआ, और वो सोचता है आधा समय मैं सुख चैन से बिताऊंगा और बाकी जो समय उसमें चिंता दुख जो भी है वो बाद में देखेंगे। तो 3 साल तक बहुत खुशी से वो राज्य करता है, पर अंतिम 2 वर्ष दुख चिंता भय और फिर उसका समय पूरा होता है। उसी दुख चिंता भय में नाव में बैठता है, नाव वाला उसे ले जाता है उस ओर जहां पर खौफनाक जानवर है। 5वां चौथा राजा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो 5 साल बहुत अच्छे से राज्य करता है, खुशी खुशी से राज्य करता है और जब उसके जाने का समय आता है और वो जब नाव में बैठता है तो बहुत खुश है। वो नाव का केवट, वो नाविक पूछता है कि आप इतने खुश कैसे, आपके पहले जितने राजा थे वो सब बहुत दुखी थे और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो। वो राजा कहता है 5 साल तो बहुत अच्छे से बीते, 5 साल बहुत अच्छा सा शासन चला, सब लोग बहुत दुख खुशी में थे और इन 5 सालों में मैंने एक काम कर दिया है, जंगल को कटवा दिया, सैनिकों को भेज कर वहां पर एक नया राज्य स्थापित किया है और मेरे पहले सारी प्रजा वहां पहुंच चुकी है और मेरा इंतजार चल रहा है, अभी तो मुझे जाके बस वहां राज्य करना है। तो उस राज्य की प्लानिंग इसी राज्य में हो चुकी थी। हमारा क्या हाल है, हम कौन से हैं, पहले वाले जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी या दूसरे वाले जिसके जीवन में चिंता दुख संताप एंग्विश दर्द पीड़ा है, या फिर तीसरे वाले जो सोचते अभी समय बहुत है, पहले खाओ पियो मौज करो बाद में देखेंगे क्या करना है, या फिर चौथे जो अत्यंत बुद्धिमान है जिसने वर्तमान में ही भविष्य को साध लिया, जिसने भविष्य वर्तमान में ही भविष्य को देख लिया, परख लिया, जान लिया, समझ लिया, उसकी प्लानिंग कर ली और उसे वैसे ही कर दिया जैसे वो चाहता था। तो आज 84 दिनों की भट्टी का अंतिम दिन, 84 जन्मों का ये अंतिम 84वां जन्म, 2021वें साल का ये अंतिम दिन, और आज ही क्या है, भगवान के अवतरण का दिन। इतनी सारी घटना एक साथ हो रही है, जब इतनी घटना एक साथ हो तो क्या होना चाहिए, सेलिब्रेशन। 56 प्रकार का भोग, ये शब्द कहां से आया, गायन है ना, 56 प्रकार का भोग, भक्ति में ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग खिलाया जाता है, कहां से आया। भागवत में दिखाया है इंद्र कुपित होता है, बारिश गिरती है वृज में और क्या करते, 7 दिन के लिए गोवर्धन को गिरधारी अपने उंगली से खड़ा करके रखते थे। 7 दिन तक बेचारे वो ब्रजवासी, वो गोप गोपियों, ना खाना ना प्यास ना भोजन ना पानी, कुछ भी नहीं मिलता है उनको। इसलिए 7 दिन के बाद 7x8 8 प्रहर होते एक दिन में, दिखाया है श्री कृष्ण जो थे 8 प्रहर का उनको भोजन दिया जाता था। तो सभी गोप गोपियों को 56 प्रकार का भोग खिलाया जाता है, 7 दिन कुछ खाया नहीं, 7 दिन कुछ पिया नहीं, और एक एक दिन का 8-8 दिन का तो कितने हो गए, 56, तो 56 वैरायटी का भोजन उन्हें खिलाया जाता है। तब से गायन हुआ 56 प्रकार का भोग, तो आज हम भी 56 प्रकार के पकवान खाएंगे, वो भी अमृत वेले के तुरंत बाद, भोग भी लगाएंगे 56 प्रकार का और साथ साथ खाएंगे भी। तो ब्रह्मचरितमानस का आज का अठारहवा दिन, 17 दिन क्या क्या किया वो रोज तो बहुत गिना दिया 17 दिन हम इंतजार था ब्रह्मा भोजन का। तो इन 84 दिनों में बहुत कुछ बातें हमने देखी। कौन कौन सी बातें देखी 84 दिनों में? ये सीरीज कब चालू हुई थी? 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर से लेके आज है 31 दिसंबर, 23 जून, 22 अक्टूबर को सुबह एक संकल्प आया था कि अभी मौन 22 जून तो 23 जून से लेकर तो 8 अक्टूबर 108 दिन सभी क्लासेस, सभी पब्लिक टॉक, संसार के साथ इंटरेक्शन सब कुछ बंद कर दिया था। 108 दिन का वो मौन था और हम लोग हिमालय क्षेत्र में गए थे बीच में तपस्या के लिए, और वहाँ बैठे बैठे एक दिन ये संकल्प आया था कि एक ऐसी सीरीज चालू करेंगे, जब ये 108 दिन पूरे होंगे तब। तो 22 से 9 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक वो 108 दिन पूरे हुए थे और 9 अक्टूबर को ये सीरीज चालू हुई थी। तो इस 84 दिनों में हमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा? बहुत सारी बातें देखी, क्या क्या देखी कुछ पता नहीं, बोलने वाला जाने हम सुन रहे थे, बोलने वाला उधर से पचड़ पचड़ कचड़ कचड़ चालू थी। 9 दिन तो वैराग्य थे, 9 दिन अनाज के थे, 3 दिन शरीर शुद्धि के थे, 3 दिन मेडिटेशन के थे, 3 दिन उपवास के फायदे के थे, वैराग्य के 9 दिन, और 18 दिन ब्रह्माचरित मानस के थे, और 16 दिन वो उसके थे एंजल फरिश्ता वाले, और बीच में बहुत सारे इधर उधर छोटे छोटे टॉपिक्स थे। हाँ, तो इस तरह से इस सीरीज का आज हम अंत कर रहे हैं, और एक नई सीरीज कल से चालू होगी अव्यक्त गीतांजलि, जिसमें ब्रह्मा बाबा के एक एक गीतों को लिया जाएगा और उस पर बाबा के जीवन के आधार पर कुछ चर्चाएं होगी। तो आज का टॉपिक क्या है? ब्रह्मा भोजन। 5 लोग जंगल से गुजर रहे थे और खो गए। 5ों ही अत्यंत बुद्धिमान थे। पहले ने कहा मैं लेफ्ट की ओर जाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं राइट की ओर जाऊंगा क्योंकि राइट मीन्स राइटियस, तीसरे ने कहा मुझे डर लग रहा है मैं पीछे जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता हम निकल पाएंगे, चौथे ने कहा मैं सीधा जा रहा हूं देखता हूं आगे क्या है, पांचवें ने कहा ये जो झाड़ है ना मैं इसके ऊपर चढ़ता हूं, तुम लोग यहीं रुकना मैं झाड़ के ऊपर चढ़ के देखता हूं कि शॉर्टकट कौन सा है इस जंगल से बाहर निकलने का, और ये जो चौथ पांचवा एकदम ऊपर चढ़ जाता है और उसे दिखाई देता है कि इस जंगल से निकलने का रास्ता तो बहुत ही आसान है और एकदम शॉर्टकट है, ये चारों ही मूर्ख निकले, मैं अकेला ही एक बुद्धिमान हूं क्योंकि मुझे शॉर्टकट पता चल गया है और यही रास्ता है, तो वो सोचता है कि वो राइट है, परंतु 5ों ही राइट है। कैसे कैसे? जो पहला है जो लेफ्ट जाता है उसे जंगली जानवर मिलते हैं वहां पर, उन जंगली जानवरों से वो लड़ता है, भूखा प्यासा रहता है, उसका अनुभव बढ़ जाता है, अब उसके पास एक ऐसी ट्रेनिंग है कि जंगल में भूखा प्यासा भी कैसा रहा जाए और जंगल के जानवरों से भी कैसा लड़ा जाए और सहन किया जाए जंगल को, ये अनुभव उसके पास जुड़ गया है, इसलिए वो भी गलत कैसे हो सकता है। दूसरा जो था जो राइट जाता है उसे डाकू मिलते हैं, वो उसे लूट लेते हैं, उसे मारते हैं, उसका सब कुछ छीन लेते हैं, परंतु उसकी सहनशीलता देखकर उन डाकुओं के अंदर कुछ कुछ होने लगता है और उसके साथ रहते रहते वो डाकू परिवर्तित हो जाते, इसलिए इसका भी मार्ग गलत कैसे हो सकता है। तीसरा, जो पीछे चला जाता है वो एक पगडंडी तैयार कर देता है, जाते जाते आने वाली पीढ़ियां उसी पगडंडी से आगे जा सकती है, वहां तक पहुंच सकती है, और जो एकदम आगे निकल जाता है वो पीछे आने वाले लोगों के लिए एक संभावना का निर्माण करता है कि आगे भी क्या क्या है उसे पता चलता है। अब उसे पता है आगे क्या क्या होने वाला है। और जो पांचवा है, जो ऊपर चढ़ जाता है, उसे तो शॉर्टकट पता ही है। पांचों ही लोग सही थे, पांचों ही लोगों ने दूसरों को, दूसरों के मार्गदर्शक बने, इसलिए कोई भी गलत नहीं है। इस ज्ञान योग के मार्ग में भी ढेर सारी मान्यताएं, मत मतांतर है। हर एक ने अपनी बाबा की जो बातें समझी अपने अनुसार समझिए, और हर एक उस दिन भी कहा था पांच चीजों का आधार लेता है अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले अव्यक्त साकार या अव्यक्त मुरली में आया है इसलिए यही राइट है। दूसरा, मम्मा और बाबा ने ये किया था इसलिए यही राइट है, मैं जो कर रहा हूं। तीसरा, दादियों ने ऐसा किया, हमने देखा है, हमने दादियों की पालना ली है इसलिए ये हम जो कर रहे हैं ये हमने दादियों से सीखा इसलिए यही राइट है। चौथा, ये दूसरों के अनुभव है, हमने सुने हैं, उन्होंने अनुभव सुनाए हैं, अब उनके जीवन के अनुभव, इसलिए यही राइट है। और पांचवा, ये मेरे अपने अनुभव है। तो कोई अगर 3:30 बजे उठता है तो वो ये चार चीजों का आधार लेता है, कोई 2 बजे उठता है वो इन चार चीजों का आधार लेता है, जो उठता ही नहीं है वो भी इन्हीं चार चीजों का आधार लेता है, 4-5 चीजों का। जो 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 कर रहा है वो इन 4-5 चीजों का आधार लेता है। जो एक चीज खा रहा है वो अपनी चीज सही है, यही सत्य होना चाहिए, यही खाना चाहिए सबने, इसको मनवाने के लिए भी इन 5 ही चीजों का आधार लेता है। ये मुरली में आया है, बाबा ने कहा है खाओ पियो मौज करो, ये तुमने कहां से लाया नया, ये कहीं लिखा नहीं है। हमारे पास साकार और अव्यक्त मुरली की कॉपीज है, उसमें लिखा हुआ है ये सहज राजयोग है, तुम्हें हठ योग नहीं करना है, उपवास वो लोग करते हैं और अपने शरीर को कष्ट देते हैं, ये मुरली में लिखा है। तुम हठ योगी नहीं हो, तुम्हें हठ योग नहीं करना है। वो एक अहमदाबाद का साधु था, बाद में पकड़ा गया। ब्रह्मा भोजन, सम्मान, कदर, ये सब हर एक जो भी खाता है, जो भी कुछ करता है, इन 5 चीजों का आधार लेकर अपनी बात को सिद्ध, केवल खान पान की बात नहीं, कोई भी कोई सेवा भी करता है तो इन 5 चीजों का लेता है, और ये लेने के बाद फिर थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो मनमत नहीं है। परंतु ये भूला जा रहा है कि भगवान सागर है, सागर की अनंत लहरें हैं। उसने अगर वो कहा है तो कुछ और भी कहा है, उसने अगर यहां ये कहा है, भगवान की एक बात समझने के लिए उसकी सारी बातें समझनी पड़ेगी, पार्ट को समझने के लिए होल को समझना पड़ेगा, कंप्लीट को। केवल एक चीज पकड़ ली और बस यही सत्य, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सागर है, इतनी लहरें हैं। किसी मुरली में है, तुम गीत संगीत कविताएं सुनो जरूरी है, और किसी में कहा टाइम वेस्ट, किसी ने कहा बिना ब्रह्मा के शिव पापा तक नहीं पहुंच सकते, और किसी में कहा है ब्रह्मा को याद करोगे तो नर्क में जाओगे, देवधारी को थोड़ी याद किया जाता है। तो आज इस सीरीज का अंतिम अध्याय क्या है, ब्रह्मा भोजन। इंग्लिश में कहते हैं आप किसी का धर्म बदल सकते हो, भोजन नहीं बदल सकते। यू कैन चेंज मैन्स रिलीजन बट नॉट हिज फूड। इतना कट्टर रहता है व्यक्ति अपने भोजन के प्रति, इतनी आसक्ति होती है उसे भोजन के प्रति। तो बाबा ने आज तक भोजन के लिए क्या क्या कहा, ऐसी हम 56 बातें देखेंगे। 56 प्रकार का भोग है ना, तो आज सबको भूख तो लगी होगी ना, तो आज ये भोग खाएंगे। वास्तव में योगी का भोजन क्या है? सात प्रकार का भोजन होता है योगी का। सबसे पहले ज्ञान ही उसका भोजन। योगी का भोजन स्थूल नहीं हो सकता, सूक्ष्म होते जाता है। भोजन सूक्ष्म, कम, महीन और धीरे धीरे टॉक्सिन रहित, विषाक्त रहित होता है और धीरे धीरे बहुत बहुत सूक्ष्म होते जाता है। ज्ञान भोजन है, खुशी भोजन है, खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख भोजन है योगी का। ज्ञान सुनाना उसका भोजन है, अर्थात सेवा ही उसका भोजन है। वो सेवा ही उसे बहुत शक्ति देता है। प्रभु प्रेम ही योगी का भोजन है। प्रभु प्रेम से इतना भरा है भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता है। योग ही उसका भोजन है। योगी का भोजन क्या है? योग। वो कनेक्टेड रहता है बाबा से, डिवाइन लाइट, डिवाइन न्यूट्रिशन उसे प्राप्त होते रहता है निरंतर। इसलिए स्थूल भोजन की उसे, फिजिकल फूड की उसे, साकार भोजन की उसे कम 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 आवश्यकता पड़ती है। और जितना शरीर में भोजन कम उतना ऊर्जा ज्यादा, जितना शरीर में भोजन ज्यादा उतना शरीर किसने व्यस्त रहेगा? उसे पचाने में, उसे फेंकने में। जो शरीर जितना शुद्ध होते जाता है वहां पर भूख लगना ये समाप्त होते जाता है धीरे धीरे। भूख लगती है क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हैं शरीर में। इसके लिए योगी का भोजन धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म होते जाता है। तो अभी हम शॉर्ट में बाबा ने अलग अलग समय पर भोजन के लिए, ब्रह्मा भोजन के लिए क्या क्या कहा है। ब्रह्मा भोजन अर्थात जो भोजन ब्रह्मा ने खाया, ब्रह्मा भोजन अर्थात जो पवित्र भोजन है, ब्रह्मा भोजन अर्थात सबसे सतो प्रधान जो भोजन है, ब्रह्मा भोजन अर्थात जो राजसिक नहीं है, जो तामसिक नहीं है, ब्रह्मा भोजन अर्थात उसकी वो परिभाषा नहीं है कि कुछ भी हम बना लो और वो ब्रह्मा भोजन हो गया। ब्रह्मा भोजन के नाम पर जो हम खा रहे वास्तव में वो ब्रह्मा भोजन है ही नहीं। ब्रह्मा भोजन बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंचा शब्द है। उसको हमने जितना साधारण बना दिया, कुछ भी बनाओ अपनी इच्छा से और खाओ और ये समझो कि हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। हर 10 ब्राह्मणों को देखा जाए तो उन हर 10 ब्राह्मण में से एक व्यक्ति बीमार है। क्यों? सभी ब्रह्मा भोजन खाने वाले। हर 10 में से यहां भी अगर देखा जाए, हर 10 उसमें से एक को कुछ ना कुछ तकलीफ है। 9 ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एक तो बीमार है ही। हर एक के घर में जाओ तो दवाइयां ही भरी पड़ी है, बीपी की गोलियां, शुगर की गोलियां, और वो नहीं तो विटामिन्स, ताकत की गोलियां। जवान जवान कुमार आते हैं हमारे पास ओपीडी में। क्या तकलीफ है? कमजोरी। क्या तकलीफ है? कमर में दर्द, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, नेशनल डिसऑर्डर है, इंटरनेशनल डिसऑर्डर, सब कुछ नहीं है तो पेट की तो तकलीफ है ही। पहले कहते कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ, कुछ और है? कुछ नहीं। पेट कैसा है? हाँ, पेट का रहता है थोड़ा थोड़ा। उसमें ऐसा कभी कोई नहीं बोलता है कि पेट मेरा एकदम ठीक है, कुछ तो है उसमें। और सभी रोगों का मुख्य एक कारण है भोजन। तो बाबा ने क्या क्या कहा? 56 बातें हैं। पहली बात, साकार मुरली, 20 अक्टूबर 2021। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। शुद्ध भोजन अर्थात जिसमें अशुद्धि ना हो। योग युक्त तो कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाए तो उसमें बहुत बल मिल सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अपने हाथों से बना हुआ भोजन। भोजन में बहुत सारे दोष है। सबसे पहला दोष, किसने पैसे दिए, कहां से पैसे आए, वो कितनी मेहनत से कमाए गए हैं या किसी का शोषण कर कमाए गए। एक नंबर है, दो नंबर है, ब्लैक है, व्हाइट है, वो भोजन, वो पैसा। दूसरा, भोजन जिसने लाया उसकी मनस्थिति क्या थी, भोजन जिसने पकाया जिसने बनाया वो किसान जो खेत पर था, कितने सारे फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं उस भोजन में। वो किसान जिसने दिन भर दारू पिया और बहुत हिंसा की उधर खेतों में, और फिर उसने फसल पकाई और फिर पेस्टिसाइड्स और क्या क्या डाल के फिर वो भोजन, फिर वो ट्रांसपोर्ट, फिर उसमें केमिकल्स जो ऐड हुए, जो पेस्टिसाइड्स ऐड हुए, प्रिजर्वेटिव्स ऐड हुए, फिर वो बॉटल, फिर वो पैकिंग, फिर उसमें जो ये किया गया नफा नुकसान, प्राइस बढ़ाई गई, छल कपट किया गया, वो सब कुछ, और फिर भोजन यहाँ पहुँचा मधुबन में, सेंटर में या घर में, और फिर हमने किस मनोस्थित की मनोभाव में वो बनाया, मानसिक दशा कैसी थी, चित्त की दशा थी। माता भोजन बना रही है मधुबन में, किसकी याद में? अपने पोते की याद में। कैसा होगा वो, दूध पिया होगा कि नहीं पिया होगा? बीच में एक दो आंसू भी गिर गए होंगे, किसको पता चलता है? फिर भोग किसने लगाया और किस भाव से लगाया? फटाफट लगा दिया कि फटाफट फटाफट ये भी काम वो भी काम, वो भी एक कारोबार है। और उसके बाद में फिर परोसा किसने? पहली बार थाली लेकर गए, दिया, दूसरी बार फिर गए, परोसने वाले ने देखा ये दोबारा क्यों आ रहा है, क्रोध से भर गया उसका मन हमारे प्रति। और फिर ऐसी थाली लेकर, ऐसा भोग लेकर हम बैठे, और हम खा भी कैसे रहे, खड़े खड़े, जल्दी जल्दी में, क्रोध में या दुखी होकर, कोई धन्यवाद का भाव नहीं, और उसमें नमक कम है और उसमें तीखा ज्यादा है, और फिर हम बीमार पड़ रहे हैं, और हम कहते हैं हमने ब्रह्मा भोजन खाया फिर भी बीमार पड़े। ये भी सारी चीजें हुई है साथ साथ। तो बाबा कह रहे अपना भोजन अपने हाथ से बना, इसके लिए जो बाहर कुमार रहते हैं बलिहारी उन कुमारों की, जो अपने हाथ से अपना भोजन बनाते, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। परंतु जो मधुबन में रहते, सेंटरों में रहते हैं, जिनको बना बनाया भोजन मिलता है, उनका ये लक्ष्य होना चाहिए कि उसको अच्छे से दृष्टि देकर खाए। भोजन एक तपस्या हो जाए, भोजन एक प्रार्थना हो जाए, भोजन एक यज्ञ बन जाए। धीरे धीरे, क्रोध से नहीं, उत्तेजना से नहीं, आसक्ति से नहीं, धीरे धीरे, कॉन्शियस ईटिंग। तो ये सबसे पहले पॉइंट थी कि अपने हाथों से खुद बनाना, और शुद्धतम भोजन, और निरंतर शुद्धतम भोजन, सात्विक भोजन की खोज करते रहनी है। हम इनके हाथ का नहीं खाते, हम उनका हाथ का नहीं खाते, हम नॉनवेज नहीं खाते, बस यहां तक ही खुश है। पर वहां जो लोग खाते नहीं, हमने सब यहां निर्माण कर दिया, हम बाहर का कुछ नहीं खाते, पर बाहर जो नहीं बनता वो सब हमारे पास बन रहा है, उससे भी कई गुना अधिक, उससे कई गुना अच्छा, वो तो है। इसी मुरली में बाबा ने यह भी कहा है कि तुम बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाप की याद में बनाते हो, तुमको प्रैक्टिस हो गई है इसलिए, ये तुम्हारी प्रैक्टिस है इसलिए। तो सबसे पहली पॉइंट, भोजन शुद्ध हो। दूसरी उसी में बात, एक अपने हाथ का खुद बनाए। जैसे पवित्रता स्त्री पति के बगैर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। एक अव्यक्त संदेश है गुलजार दादी के द्वारा, जिसमें बाबा ने कहा है यदि भोजन याद में बनाया जाए और खाया जाए तो 50% प्यूरिटी अपने आप अचीव हो जाएगी, 50% ब्रह्मचर्य अपने आप आ जाएगा। नहीं आ रहा इसका मतलब ना याद में बन रहा है ना याद में खा रहे है। भोजन खाते समय इधर उधर देखना ही नहीं, और भोजन बनाते समय भी हमने देखा कई लोगों की बहुत बात करते करते भोजन बनाने की आदत है, आवाज, अरे ये दो अरे वो दो, अरे ये दो अरे वो दो, अरे ये डालो अरे वो डालो। मौन में भोजन बनाना है। भोजन बन रहा हो तो किचन से आवाज नहीं आनी चाहिए, कम से कम आवाज, बर्तनों की आवाज आती रहती है जोर जोर से, साइलेंस। बनाते समय भी, खाते समय भी, भोग लगाते समय भी, परोसते समय भी, वो है ब्रह्मा भोजन। ये है परिभाषा ब्रह्मा भोजन की। हम जिसे ब्रह्मा भोजन समझ रहे वो नहीं, बात करते करते भोजन बना रहे हैं, और कई लोगों की भोजन बनाते बनाते खाने की आदत होती है, ये भी आदत है, भोजन बना रहे और खा भी रहे बीच बीच में, टेस्ट। और कईयों का ध्यान केवल टेस्ट के ऊपर रहता है, भोजन तो बस हम नाम रखा है उसके अंदर कुछ और ही कर रहे। ब्रह्मा भोजन के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो कुछ और ही है, झूठ, आडंबर। अगला सेकंड पॉइंट, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। ये भगवान के महावाक्य है। अगर ओवर ईटिंग कर रहे हो ब्रह्मा भोजन के नाम पर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, और दो। एक बार थाली लेके गए, दूसरी बार लेके गए, फिर वो रख दिया धो के, दूसरी नई थाली लेके गए ताकि उसको पता ही ना चले कि हमारी वो थाली है, न्यू टेक्निक। या किसी को बोलो तुम लेके आओ हमारे लिए, क्योंकि बार बार जाते हैं तो वो उनकी नियत नहीं होती देने की। दूसरे काउंटर पर क्या करें, अब पसंद ही आ गई चीज, रोज तो बनती नहीं है, और खाना है, बाहर तो खाते नहीं है, और सारे दिन भर की सेवा और थकान, भूख तो लगेगी, और हम तो मेहनत करने वाले हैं, कुमार है, ज्यादा भोजन चाहिए हमको, बाबा को देखो कितनी चिंता है, पर हम इतना अच्छा भोजन है, पर ये देने वाले देते नहीं है। उनको समझ में नहीं आता हम जवान है, हम कुमार है, हमारी भूख ज्यादा है, हम ज्यादा काम करते हैं, कंजूसी की तरह देते, इतना सा देते। दिलदार आदमी कोई रहा तो बहुत खुशी होती है उस दिन, तो जब देखते अरे अपना दोस्त है, फिर तो एकदम मन खुश हो जाता। खाओ दबा के और झोला ले जाओ भर जाए। द्वापर युग के जो ब्राह्मण थे उनके पेट देखे क्या कैसे थे, वो किसकी यादगार है, हमारी। वो जाते थे कहीं पर राजा के कहा, खाते भी थे और साथ में झोले में भर के भी ले जाते थे, वैसे हम भी ले जाते हैं अगले दिन के लिए। खान पान की संभाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, भगवान के महावाक्य है, संभाल करो। ओवर ईटिंग करते हैं, जब भी एक्स्ट्रा बन जो पसंद का होता है ना, ओवर ईटिंग होता है, जो भी कुक्ड होता है वो ओवर ईटिंग होता है हमेशा, जिस भी चीज को पका ले वो फिर ओवर ईटिंग करते हैं, जिसमें नमक अच्छा हो, तेल मिर्च मसाला, वो ओवर ईटिंग होता है। यह अमूल्य तन है भगवान के महावाक्य। यह दूसरा 6-8-21 की मुरली। तीसरा, अभी हम देवता बनते हैं, यह है यहाँ ही दैवी गुण धारण करने, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार का भोजन तो वहां मिलेगा, यहां साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। थर्ड पॉइंट, साधारण, हमारा भोजन कैसा हो, सिंपल हो। बहुत सारी थालियां, थाली में इतनी चीजें भरी है, दाल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, क्या कुछ नहीं है इसमें, और इसके पहले भी कुछ खा लिया, उसके बाद वो लस्सी और उधर आइसक्रीम और क्या छाछ गुलाब मीठा स्वीट। भोजन एक इन्फॉर्मेशन है, शरीर कंफ्यूज हो जाता है, क्या खाऊं, किधर खाऊं, कैसे खाऊं, किसको किसको खाऊं, क्योंकि अलग 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 चीज अलग अलग जगह पर पचन होती है, प्रोटीन्स अलग जगह डाइजेस्ट होता है, कार्ब फैट्स ये सब मिक्स्ड है, कॉम्बिनेशन ही गलत है बहुत सारे। इसके लिए फिर जिस दिन ब्रह्मा भोजन होता है दूसरे दिन हमारे ओपीडी में आ जाते हैं लोग, लूज मोशंस, क्या हुआ, नहीं वो कल थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया, वो था ना उधर तंदूरी सुखधाम, उसमें थोड़ा होता है, कुछ नहीं हो जाएगा, आज एक दिन थोड़ा उपवास। ऐसी क्रोध भरी नजरों से देखते हैं, अगर उनको कहा वो एक दिन आज थोड़ा हल्का करो, वो नहीं हो सकता, दवाई दो, नहीं दोगे तो किसी और के पास जाएंगे। ये है हमारा भोजन, सब है उसमें। चौथा, कुमारियों से मुलाकात, बाबा की मुरली, अव्यक्त वाणी 15-5-83। कभी खाने पीने की तरफ कहां आकर्षण तो नहीं जाता, भगवान कह रहा है ये। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं, बाबा कहते खाओ पियो मौज करो, ये तुमने कहां से लाया, ये वही बाबा है जो कह रहा है, ये दूसरा वाला नहीं है, सेम वर्शन, सेम बाबा, सेम ओरिजिनल वाला, 73 वाला बाबा है ये। क्या कह रहा है, थोड़ा बिस्किट या आइसक्रीम खा ले ऐसी इच्छा तो नहीं होती। लोग कहते हैं ना, हम आइसक्रीम खा लेते बाहर का आइसक्रीम, क्योंकि वो मशीन का है, मशीन अपने आप काम करती है क्या। हम बिस्किट खा लेते, बिस्किट अपने आप बनते, बिस्किट मशीन, ये आइसक्रीम, और क्या खाते बाहर का, चॉकलेट्स, ब्रेड, चिप्स और क्या खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और क्या खाते हैं, ये सब चलता है, ये सब चलता है। बाबा ने कहा है ना, लाचारी हालत में खा लो। लाचारी हालत मतलब सुबह नाश्ता किया था, दोपहर का भोजन नहीं है इसलिए ये खाया, क्या ये लाचारी है? सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाले ऐसे पक्के, देखना वहां जाकर संग में ना आ जाना। ये वही बाबा है जो तुम कह रहे हो कि वो कहता है खाओ पियो और मौज करो, ये वही है। ये अव्यक्त मूल्य की डेट 83 17 5। नेक्स्ट, मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे पेट के लिए सिर्फ दो टुकड़े रोटी, दो टुकड़े खाना है। पेट कोई जास्ता नहीं खाता, जास्ती नहीं खाता, एक पाव आटे का खाता है। दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट भर सकता है। होटल में जाओ कितना बिल होता है, 10 रुपए में भी पेट भरता है तो 10,000 में भी। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते, भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं, बाबा कह रहा है, सुप्रीम डॉक्टर लौकिक डॉक्टर का उदाहरण दे रहा है, क्या कहते हैं, एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं पड़ेंगे, मोनो डाइट, एक ही प्रकार का भोजन। ये करके देखा है किसी ने, ये करके देखना, रसाहार, उसमें भी एकाहार। हमने एक बार किया था 84 दिन केवल मैंगो, मैंगो मोनोडाइट के लिए हेवी है बहुत, संतरा, और वो भी एक ही बार, वन मील अ डे और मोनो, एक ही 84 दिन। ग्लास वो उसकी आपकी मर्जी, 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास, पर अगर चम्मच से लो तो एक ही ग्लास 1 घंटा चलता है, धीरे 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 धीरे। परंतु वो 84 दिन जैसे संसार है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, गायब। पर हाँ, ये दुनिया वाले पागल कर देते हैं, बस उतना है। बाकी शरीर है ही नहीं, शरीर क्या, शरीर की उत्तेजना है क्या, शरीर की बीमारी क्या होती है, बैठे और अशरीरी। चौथा, छठवा, बाप भी समझाते, रोटी टुकड़ा खाओ, जो मिले उसे खुशी खाओ, दाल रोटी जैसी और कोई चीज नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रहना चाहिए, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। खाने लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे, फिर ऐसा थोड़ी कहेंगे माखन बिगर हम रह नहीं सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी एंड टाइम्स, अंत में ऐसा समय आएगा कि तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे, हमको चटनी चाहिए, फिर क्या कहोगे, आचार कहाँ है, फिर क्या कहोगे, हमको इसमें घी लगा के चाहिए, पनीर चाहिए। बाबा कहते हैं मैं दाल रोटी दूंगा, पर हमारे दाल रोटी से थोड़ी ना होता है, हमको क्या चाहिए, हमको माल पानी चाहिए, क्योंकि आदत है इतने सालों की, महीनों की, वर्षों की। फिर क्या करोगे, फिर कैसी बेचैनी होगी, खा के देखो 10 दिन दाल रोटी क्या होता है, देखो करके देखो ये प्रयोग, केवल दाल रोटी, कुछ नहीं डालना उसमें, ना नमक ना कुछ और, आंसू आ जाएंगे, रोएंगे। बाबा ये क्या हो रहा है, इतनी सेवा करो और ये, इसके लिए आए थे यज्ञ में, आंसू आ जाएंगे देखना, सही में आंसू, बिना नमक के 1 महीना खा के देखो, तीसरे चौथे दिन आंसू आएंगे, 11वें दिन झूमने लगेंगे कि हमें नमक की जरूरत ही नहीं है, हमें आवश्यकता ही नहीं, इंद्रिय जीत स्थिति आ जाएगी। ये जो जबान है ना, इसको जो आदत डालो वो आदत लगेगी, 10 दिन में टेस्ट बर्ड्स चेंज हो जाएंगे। उसको बिना नमक के दो तो नमक आउट हो जाएगा, शक्कर आउट हो जाएगी, ये तेल जरूरत ही नहीं पड़ेगी आउट, ये मसाले आउट, ये मिल्क आउट, और फिर पता चलेगा कि कितना कम इस शरीर को चाहिए, और फिर धीरे धीरे हम एक नई जीवन शैली की ओर बढ़ेंगे, दैट इज नोन एज ब्रदारियन लाइफस्टाइल, प्राणिक लाइफस्टाइल। ब्रदारियन के भी 5 लेवल होते हैं, एक वो जिसको पता ही नहीं कि ऐसे भी लोग हैं संसार में जो निराहारी जीवन शैली जी रहे, उनका भोजन है सूर्य की किरणें, उनका भोजन है हवा, उनकी भोजन है धरती से निकलने वाला प्राण ऊर्जा, उनको कहा जाता है प्राणिक पीपल, प्राणिक लिविंग। उसकी फेस्टिवल्स होते हैं, अभी भारत में फेस्टिवल होने वाला है, कब है, मार्च या कभी, जिसमें वो सारे लोग ब्रदारियंस इकट्ठे होंगे। ब्रदारियंस के 5 लेवल होते हैं, पहला लेवल जो व्यक्ति को पता ही नहीं कि ऐसी भी जीवन शैली है कि जिसमें भोजन ही नहीं है, दूसरी जीवन, दूसरा लेवल है 4, जिसको थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस हो गया कि ऐसे भी लोग हैं। तीसरा, अनुभव होने लगा। दूसरे नंबर के वो लोग हैं जिनके जीवन में वो है, वो कभी खाते कभी नहीं खाते। ऐसे हम भी कितने लोगों, हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ 15 दिन रहे हैं कि जो पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं, ना भोजन ना पानी, और इतनी ऊर्जा इतना उछलते रहता है। इज अ ब्रदारियन लेवल 4 जो भारत में अभी था, अभी अभी भारत से विदेश चला गया और 2-3 घंटा सोता था, और हम सबसे ऊर्जा उसमें ज्यादा। हम लोग जो हमने कहा उत्तराखंड हम गए थे, भारत में सबसे ज्यादा वो तेज भागता था, हम लोग सब पीछे रहते थे। हम लोग खाना खाते थे जो भी कच्चा, पर वो उसको कुछ भी देखकर जैसे वो उसके लिए है ही नहीं। लेवल 4 ब्रदारियन। उसका भोजन क्या था? सूर्य की किरणें। उसका भोजन क्या था? हवा। और उसमें वो इतना शक्तिशाली, और शक्तिशाली नहीं, बॉडी बिल्डर। उसकी पूरी वो 6 abs 6 packs मसल्स, कोर, सब कुछ। और खा क्या रहा है? कुछ भी नहीं। और बातें कौन सी कर रहा है? साइंस की, सारा साइंस। और उसका लक्ष्य ये नहीं है कि योगी बनूं, उसका लक्ष्य हेल्दी रहूं। होलिस्टिक अप्रोच, दिस इज नोन एज ब्रदारियन लाइफस्टाइल। और वो अकेला ही नहीं है इस यात्रा में, ऐसी बहुत से लोग हैं। जसमहीन की 18 किताबें है, रे मेयर की 1 किताब है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ब्रदारियन की 1 कम्युनिटी है। इन लोगों का लक्ष्य क्या है? अध्यात्म, अपने आप ही अध्यात्म की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि शरीर में कचरा जा ही नहीं रहा है, तो निरंतर अशरीरी अवस्था है, कोई बीमारी है ही नहीं उन लोगों को। लेवल 4 ब्रदारियन, वो भी एक जीवन शैली, उसको कहते हैं निराहारी जीवन शैली। तो बहुत थोड़े की आवश्यकता है शरीर को, जितना हम ठूस ठूस में उसको डाल रहे, 3 बार भोजन आउट। ये कॉन्सेप्ट साइंस कहता है, बहुत पुराना है, 16 आवर फास्टिंग मिनिमम। इसलिए इस पूरी 84 दिनों की भट्टी में हमने एक ही बात बार बार रिपीट की है, हर दिन कम से कम 16 घंटा निर्जला, निर्जल उपवास, ड्राई फास्टिंग, न फूड न वाटर, न खाना न पीना। तब कहीं जाके शरीर में ऑटोफेजी चालू होती है, तब कहीं शरीर में जो नष्ट हो जाते हैं तत्व सारे, जो टॉक्सिन्स है, शरीर एक नया जीवन, बिना भोजन के अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती, भोजन में परिवर्तन की। वही भारीपन, रात्रि इतना ठूस ठूस के खा लिया, अमृत वेला नींद आती रहती है, सब कुछ कर लिया, फिर नींद का गई नहीं, अभी तक नहीं गई, सारे प्रयोग कर लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं 1,00,000 बार लिख के हो गया, कुछ हुआ? 16 आवर्स मिनिमम। और जिनका 16 हो रहा है डेली, वो 20 तक पहुंचे, जिनका 20 हो रहा है वो 23 तक पहुंचे। 1 meal a day, योगी अर्थात 24 घंटे में बस एक ही बार भोजन करेगा, 23 घंटे कुछ भी नहीं, 23 घंटे शरीर को दे रहा है उसको पचाने के लिए, अपने आप अशरीरीपन आ जाएगा, अपने आप प्रभु प्रेम बढ़ जाएगा, और स्वास्थ्य तो अपने आप मिल जाएगा। वो जो इतनी ढेर कटोरी भर भर के दवाइयां खा रहे, सब हटेगी धीरे धीरे, पर एक साथ नहीं होगा। ये बहुत लंबी यात्रा है ये ब्रदारियन की। कोई कहे मैं अभी के अभी करता हूं, धड़ से गिरेगा नीचे। कोई कहे कि मैं उपवास करता हूं, 3 दिन उपवास करेंगे, 4th दिन ऐसा भोजन खा लेंगे कि जैसे पता नहीं कितना दिन का भूखा है, क्या खाऊं और क्या नहीं, किसको खाऊं, ये खाऊं वहां खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, जो मिले वो खाऊं। पागल हो जाते हैं खाने के लिए लोग उपवास के बाद, कैसे उपवास तोड़ना उनको पता ही नहीं। इसके लिए उपवास एक साइंस है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा समय आएगा। अगली 7th, दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। हमें याद है जब हमने ये वाक्य पढ़ा था बहुत पहले, लक्ष्य रखा था कि जब तक पूरी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती कुछ भी ना खाएंगे ना पिएंगे। इसलिए कम से कम 2 मास तक हमारा फर्स्ट डाइट 5:30 बजे होता था, शाम को 5:30 बजे। ये प्रयोग करके देखा, अभी जो बता रहे सारे प्रयोग करने के बाद बता रहे, अब तक कभी किसी को कुछ नहीं बताया, आप भी करके देखो। फर्स्ट डाइट, पहला पानी की घूट, सारी ओपीडी हो गई, मॉर्निंग ओपीडी, इवनिंग ओपीडी, सब कुछ हो गया उसके बाद। और बहुत ऊर्जा, बहुत शक्ति, सारे दिन भर बोल रहे, 1 क्लास इधर 1 क्लास उधर, ऐसा भी नहीं कि मुंह सूख रहा है और ये हो रहा है, एक ही दिन में 2-3 क्लास और साथ में ओपीडी और इमरजेंसीज और सब कुछ, और उसके बाद में शरीर में अंदर कुछ भी नहीं। पहला डाइट ये एक बार पढ़ा था, बस संकल्प ले लिया। कि मुझे ये करके देखना है क्या होता है, लेट मी सी, मर जाओ तो ठीक, मरूंगा तो मरूंगा, क्या करना है, भगवान को जिंदा रखना है तो रखेगा, मरोगे नहीं पर खा के मरते न खा के कम मरते। दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी वजह से मर रहे लोग, खा के मर रहे। आज देखना कितनी प्रतिज्ञाएं करते वजन कम करने की दुनिया भर के लोग। सबसे टॉप मोस्ट प्रतिज्ञा कौन सी है, वेट लॉस, कि हमको वजन कम करना है। और एक्सरसाइज करते, वो होती है ना गार्डन में जिम, ऐसे ऐसे माताएं मोटी मोटी एक्सरसाइज करती है, कहती हम तो बहुत एक्सरसाइज करते वजन घटता ही नहीं। नक्की के राउंड करते, डोलते नक्की राउंड करते, हाँ डेली वॉकिंग, और वजन इतना सा कम नहीं होता। माताएं चलती है नक्की पे, नक्की डोलने लगता है इतनी बातें करते करते। तो जब तक किसी की सेवा ना करो तब तक खाओ ही नहीं, ये है श्रीमत। जब तक मुख से ज्ञान नहीं दिया किसी को, इसके लिए नियम रखो कि 12 बजे तक या उठने के 8 घंटे तक ना खाना ना पीना, निर्जल। उठते बरबर पानी पीने लगते, ये करने लगते, वो करने लगते, चाय पीते, क्या क्या करते पता नहीं, पीते रहते और जाते रहते। कम से कम उठने के बाद 8 घंटे, योगियों का भोजन होना चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल, 12 बजे बज गया उसके बाद जो डालना है डालो, और जितना हो सके 4 बजे के अंदर पूरा, बस ये 4 घंटे वाली गैप, 4 आवर्स वॉरियर डाइट, बाकी सब समय भूल जाओ भोजन को। अगला, यह पहने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचा में अटक डालती है, मंजिल बहुत बड़ी है। साकार मुरली 22:4:21, ये खाऊं वो खाऊं छोटी छोटी बातें, बाबा ने कहा ये भी अटक डालती है सारी, मंजिल बहुत ऊंची है। नेक्स्ट, जो रॉयल होते वो थोड़े में तृप्त होते, रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर, एक रोटी में भी तृप्त, 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त, और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि मन की भूख है, शरीर को तो भूख ही नहीं है, मन कहाँ की है भूख, इधर है, ये खाऊं वो खाऊं। संकल्प कर लो, भक्ति में माताएं संकल्प करती है, नव दिल निर्जला, भूख लगती है खाती है कुछ, बच्चों को खिलाती है, हमें अपनी माता जी का पता है, निर्जल उपवास रहता था उसका, सबको खिलाएगी, खुद नहीं खाती थी, पैदल जाएगी वो अंबा माँ के मंदिर में नंगे पांव सुबह 4 बजे, उसको ना तो भूख उसको ना तो प्यास, क्या था ये, संकल्प था। अगला, जैसे बाप दादा ने श्रीमत दिए कि भोजन करने से पहले भोग लगाओ पीछे खाओ, भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा, याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है वह नहीं पड़ेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। भोग यदि नहीं लगाया, भोजन दिखा और खाना चालू, वो ब्रह्मा भोजन ही नहीं है फिर, बाबा ने कहा उसका कोई फायदा नहीं होगा, और बहुत सी बातें। अगला, ये मुरली है 20:1:90 की। अगला, जैसे आप जैसे शुद्ध भोजन याद का भोजन विश्व में और किसी को भी प्राप्त नहीं होता, इस भोजन को कहा जाता है दुख भंजक भोजन, वो भंडारा है वहां पर, ये बोर्ड लिखा हुआ है, ये मुरली जाके पढ़ लेना आज, ये दुख भंजक भोजन है, परंतु कब, याद में हो, मौन में खाया जाए, बातें कर करके भोजन करना, ये पूरे साल के लिए संकल्प ले लो कि बंद मौन। अगला, निरंतर समझो हम ईश्वरीय सर्विस पर है, भले भोजन बनाते हो वह तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरने हैं। मौन में भोजन बनाओ, ईश्वरीय याद में बनाओ, प्रभु की याद में भोजन को पावरफुल बनाओ, तो वह ईश्वरीय सर्विस हुई ना, जैसे अन्न वैसा मन कहा जाता है। 71 की मुरली। अगला, तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज ना हो जो जिसमें खिटपिट हो। भोजन कैसा बनाए, सिंपल 5-10 मिनट में बन जाए, खिटपिट, ये इसमें ये पड़ता है उसमें वो पड़ता है, इसमें ये पड़ना चाहिए उसमें वो डालना है, इसमें ये मसाला उसमें वो मसाला, दुनिया भर के मसाले डालो उसमें, ऊपर से ये चलाओ, उसको ऐसे सजाओ उसको वैसे सजाओ, यहाँ जाने के बाद सब एक ही हो जाते हैं। बर्तन की सफाई, अच्छा बर्तन जो साफ करने वाले वो कौन लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं भोजन में, भोजन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगला, भोजन भी बहुत कम जास्ती हवच नहीं होना चाहिए, क्या कह रहे बाबा, मुरली है 21/4/2020 साकार मुरली। याद में रहने वाले का भोजन बहुत सूक्ष्म होगा, बुद्धि खाने में चली जाती है, ऐसी याद में रहने वाले का खान पान बहुत थोड़ा होगा, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, एक रस एकाहारी, एक होता है निराहारी, एकाहारी, रसाहारी। रसाहार करके देखो 21 दिन क्या होता है, एकाहार करके देखो 21 दिन क्या होता है। एकाहार एक ही प्रकार का भोजन, बस मोनो डाइट सबसे बेस्ट है। लोग क्या करते हैं, फ्रूट सलाद सबसे वर्स्ट चीज है, वो सारे फ्रूट उसमें मिक्स कर दिए, बेसी वाला भात सारा कुछ डाल दिया उसमें, एक ही प्रकार का भोजन। अगला, तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे, बीमार हो नहीं तो बीमार पड़ेंगे, बाबा की मां वाक्य है ये, डॉक्टरों का उदाहरण दिया। अगला, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगला, 27/4/2020, खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। अगला, बहुत सी बात है इसमें पर समय कम है इसलिए आगे बढ़ रहे। भोजन देवता मिसल खाना है, चलन कायदे मिसल होनी चाहिए। अगला, सबसे बुरी आदत कौन सी है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद, प्रश्न है किसी साकार मुरली का। साकार मुरली है 31/7/2020 की, छिपाना अर्थात मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखते तब दिल करती है ये खाऊं, इन कर्मेंद्रियों पर तुम्हें जीत पानी है। अगला, उस साजन को भोग लगाने बिगर भोजन खाते हो लज्जा नहीं आती, वह साजन भी है बाप भी है, कहते हैं मुझे नहीं खिलाओगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए। अगला, छींची गंदी चीजें ना खाओ, बाहर की बाजार की, कौन सी चॉकलेट आइसक्रीम ये सब बाहर का है, बिस्किट्स खुद बनाओ अपने हाथ से बनाओ। अगला, ऐसी चीज ना हो, दूसरा संभाल रखनी है, हमारी आंखें कहीं मतवाली तो नहीं होती, बाजार में चने देखे तो दिल तो नहीं हुई, ऐसी दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते, ब्राह्मणी है फिर किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते चना खाएंगे, एक बार खाने से पाप थोड़ी लगते हैं, भाई कह रहा है बहन को, क्या कह रहा है, खा लो एक बार खाने से पाप थोड़ी लगता है, जो कच्चे होते वह झट खा लेते, क्या होता है एक बार खा के तो देखते, बाद में अमृत वेला अच्छा योग कर लेंगे। युक्ति से कहना, कोई अगर कहे कि भाई खाओ खाओ तो युक्ति से कहना चाहिए, चाय हम इस समय नहीं पीते, कल की मुरली, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा, चाय हम इस समय नहीं पीते, हमारा टाइम दूसरा है, अब भी तो खा के आए, ऐसे कुछ भी बोल देना। जब शरीर को चलाना आ जाएगा तब राज्य चलाना आ जाएगा, बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट, जिसने शरीर को ही चलाना, यहीं पे उसका शरीर बीमार पड़ रहा है, 10 बार डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते, डॉक्टर शॉपिंग, आयुर्वेद एलोपैथी होम्योपैथी इसकी पैथी उसकी पैथी, अरे ये बहुत अच्छा है, जाओ पकड़ो उसको जाके, अपनी फाइल लेके खड़े हो जाते ओम शांति भवन के बाहर, डॉक्टर साहब एक बार देख लो ना, और किसी का भी कमरा ढूंढो उसमें ऐसे ऐसे चूरन निकलते हैं कब्जी के कि बात मत पूछो, छिपा छिपा के रखे हुए चूरन, कहां से लाए हुए पता नहीं, कभी भी इमरजेंसी। उसके बाद में अगला, ये ब्रह्मा का किचन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बाबा कॉन्शियस ईटिंग के बारे में बातें हैं। खाना खाते हो एक एक लौकिक बात में अलौकिकता लाओ, ये खाना भी अलौकिक नहीं अलौकिकता है, भोजन खाना और चीज हजम करना, खाने से शक्ति नहीं आएगी हजम करने से शक्ति आती है। अगला, बाप के साथ बैठना खाना पीना ये गॉडली स्टूडेंट, बाबा के साथ रहकर भोजन करो, कहने का भाव। अगला, अपनी दिनचर्या भी तो भोजन भी तुम्हारा सत होना चाहिए, भोजन कैसा हो सत। अगला, डॉक्टर भी मरीज को कहते हैं ताजा फल खाओ, यह ताजा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, फ्रूट, देवता क्या थे फ्रूटेरियन, देवता कभी भी अनाज खाने वाले नहीं थे, खेती नहीं करते थे, बगीचे थे किसके फलों के। अगला, खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा, खान पान छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, साकार महावाक्य है बाबा के, मुक्त हो गए ना और ये हेल्दी वेल्दी बन गए, साकार महावाक्य। अगला, 83, घूमना ये सब याद में होना चाहिए, विनाशी डॉक्टर्स भी क्या राय देते हैं, सब ताजा खाओ, जला करके भून करके नहीं खाओ, रूप बदल कर नहीं खाओ, नेचुरल खाओ, प्राकृतिक आहार, जो आग पे गया मतलब गया, आग पे जो चढ़ा वो गया काम से, सत्व तत्व सब नष्ट हो जाते हैं उसमें, कर्मातीत समय हो रहा है। और ब्राह्मण तो बाप दादा बच्चों को गारंटी करते हैं आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, बाकी सिंपल वाला खाना मिल जाएगा तुमको, दाल रोटी तो मिलेगी, प्रकृति भी पेपर लेगी, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी क्या है, वो ये नेचुरल अटेंशन रहता है, ये खाना है ये खाना नहीं है, उनको ये पता चल जाता है कि ये करना है ये करना नहीं है। अगला, जब खाना खाते हो तब याद भी करना है, ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, खाना भी विधिपूर्वक खाना है। ब्रह्मा भोजन खाओ, जब भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया, अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण हो गया, उससे ताकत नहीं मिलेगी, सिर्फ पेट भरेगा, आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। अगला, वह भी दिन आएगा खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे? दुनिया वाले खान पान का व्रत रखते, फिर यहां बाबा ने दूसरा बताया तुम संकल्प का व्रत रखो, पवित्रता का व्रत रखो, अपने याद का भोजन करना है। और साधारण भोजन में अंतर है, वो प्रसाद है वो खाता है, याद में जो भोजन बनता है वो क्या होता है, प्रसाद बन जाता है। अगला, कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएंगी, योग में बैठना और सोना शुरू, 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो क्या करेंगे, खाना भी नहीं मिले तो क्या चलेगा, क्या करोगे? मैं देवताओं की महफिल में कभी नहीं आता हूं, जहां माल ठाल 56-36 प्रकार का भोजन मिलते मैं वहां आता हूं, मैं वहां आता ही नहीं, जहां बच्चों को सूट की रोकड़ी भी नहीं मिलती उनके पास आकर गोदी में लेकर मैं वहां मैं आता हूं, गरीबों के पास। ये बाबा के महावाक्य। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता गया, देवताएं कभी प्याज लहसुन थोड़ी खाते, इन देवताओं को कहा जाता है निराकारी, तो वो सारे वर्जित आहार है हमारे लिए, हमारा भोजन देवताओं मिसल हो जाए, देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं। अगला, भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है, ऐसा योगयुक्त भोजन बनाने वाले जो भंडारे में बड़ी शांति हो, आवाज ना हो भंडारे में, ऐसे भी आएंगे बाबा ने। और लास्ट पॉइंट 56, ये सतयुग का भोजन कैसा होगा उसके बारे में अव्यक्तवाणी है, 24 अक्टूबर 1981। क्या कह रहे बाबा, सबसे ज्यादा सेवा वहां कौन सा तत्व करेगा, सूरज, इसलिए एक पूरा क्लास यहां पर सन गेजिंग पर था, सन बाथ पर था, सूरज की किरणें रोज लेते रहो, धीरे धीरे भूख कम होती जाएगी, 9 मास जो सन गेजिंग करेगा उसको भूख क्या होती है, सब खत्म, और ऊर्जा बहुत ज्यादा, सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएंगी, यह सब करने के लिए तैयार हो रहे, गैस जलाने की, कोयला जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सबसे छूट जाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत रंगत देखने जाएंगे, वह मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे, नेचर के सिख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर को बनाओ। अगली मुरली, जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जलों से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियों होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी, यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। सतयुग अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 85। अभी जैसे खटाई के लिए टमाटर तो बना बनाया है, खटाई आ जाती है, रस डालो और टेस्ट आ जाएगी। 56 पॉइंट्स थी ये, बहुत फास्ट पड़ी, ग्रुप में डालेंगे इसको, फिर अच्छे से एकांत में बाबा की याद में भोग लगा लगा के खाना, ये पॉइंट नहीं थी, ये पकवान थे, ठीक है, ब्रह्मा भोजन। तो आज ये सीरीज का यहाँ पर एंड कर रहे हैं, शाम को बाबा आ रहे हैं, तो बाबा के सामने बैठकर स्वयं को सूक्ष्म शक्तिशाली किरणों से चार्ज करना है। ओम शांति।
जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो, भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो, आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के